सास बहू के झगड़े जो है उसमें सुलह क्यों नहीं हो पाती? आखिरकार ऐसी क्या वजूहत होती है जिसकी वजह से आपस में जो है सास बहू की नहीं बन पाती है और घरेलू मसाइल में ज़्यादा इजाफा हो जाता है? उस वाले से जो है हजरत साहब कुछ मदनी फूल बताइएगा।
दरअसल वो मदनी जहन नहीं है, इस्लामी मालूमात की कमी है, बेअमली है, इसलिए ये मसाइल बनते हैं। और पहले से जहन बना हुआ होता है कि सास बहू में बनती नहीं है, बहू सास को अजनबी समझती है और ये समझती है कि ये मेरा शोहर मुझसे छीनेगी, मेरे शोहर को ये भड़काएगी। सास जो है वो इसको पराई समझती है कि ये मेरा बेटा कहीं मुझसे छीन न ले। तो ये पहले से ही एक तरह का जहन बना हुआ है ना, जिसको अपने नाम रख देना कि यार ये जलाली बहुत है या फुलां या बहुत गुस्से वाला है, भाई उसका गुस्सा नहीं जाता, वो जलाली ही रहेगा, गुस्से वाला ही रहेगा। ये नफ्सियाती असर होता है, गुस्से वाला हो भी तो उसको गुस्से वाला कहना नहीं चाहिए, ये गुस्से वाला है या जलाली है, वरना वो बेचारा फिर मुस्तकिल हो सकता है कि ऐसा ही रहेगा। तो हमारे बस ये जहन बन गया एक, और ऐसा बन गया कि इसको मिटाना बड़ा मुश्किल है, कि सास बहू की नहीं बनती, ठनी रहती, और तकरीबन मुशाहदा भी यही है कि ये आपस में अजनबी होते हैं, एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते। अब सास अगर ये जहन बना लेना कि इसकी उम्र छोटी है, बेचारी सारे खानदान कुंबे को छोड़ छाड़ कर हमारे घर में आई है, ये एक है, हम इतने सारे हैं, देवर भी हैं तो जेठ भी है तो सास भी है तो ससुर भी है तो फिर अल्लाह ने की दे तो नंदे भी हैं, इन सब में ये अकेली आई है। और मेरी तीन बेटियां थी ना, अब ये मेरी चौथी बेटी है, और तीन बेटियों के बजाय अगर अपनी चौथी बेटी को अगर ये अहमियत ज्यादा दे ना, कम से कम कुछ अरसे तक हिकमत अमली के तहत, मिसाल के तौर पर नंद ने, इसकी सगी बेटी ने इसके सामने कोई चीज मांगी कि अम्मी जरा ये जो आप लाई है ना बाजार से, ये मुझे दे दे, तो अम्मी बोले हट तुझे नहीं दूंगी, मेरी नई बेटी को दूंगी, रे बेटा तुम ले लो, आप देखो वो आपके कदमों में ना आ जाए तो। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, ये एक मिसाल जो जहन में आई मैंने आपको दी कि अगर वो उसको रिस्पॉन्स दे, उसको अहमियत दे, क्योंकि ये जो ये बेटियां तो गोद की पली है, हिली हुई है, अब हिलाना इसको है, इसको मानुस करना है कि अभी ये भड़की हुई है, अच्छा कुछ 19-20 कर भी देना, ये गलती कर भी देना, तो उस पर पर्दा रखे, जैसे देखती नहीं है, मैंने कोई गड़बड़ कर दियो, मसलन अब उसके हाथ से कोई बर्तन छूट गया, छनाका हुआ, तो उसका तो वो बेचारे का आधा खून खुश्क हो जाएगा, अब सास बरसेगी मुझ पर, और नंदे अलग चीखेंगे किसने बर्तन तोड़ दिया। तो अब इसमें ऐसी तरकीब हो कि सास उसकी तरफ देखे नहीं, क्योंकि बर्तन कोई भी जानबूझकर तोड़ेगा ही नहीं, कभी बच्चा भी जानबूझकर नहीं तोड़ेगा, बच्चा अपनी नादानी की वजह से उसके गिर जाएगा, और बहू के हाथ में से वैसे इत्तेफाक से गिर जाएगा, वो बर्तन की उम्र पूरी हो गई थी तो टूट गया। तो अब इसको देखेंगे, और अगर फिर भी वो घबराए या माफी मांगे, नहीं बेटा नहीं बेटा, मेरी बेटी ने तुमसे ज्यादा बर्तन तोड़े, अभी वो स्कोर तुमको पूरा करना है, एक मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, उसका दिल बड़ा करने के लिए, उसका दिल इतना दरिया दिल हो जाएगी, ये अगर बेटियों से बढ़कर आपकी खिदमत ना करे तो मुझे कहना, लेकिन अत्तार की माने कौन सुने कौन। इसी तरह बहू को भी चाहिए कि सास की जली कटी अगर सुने कभी तो अपनी अम्मी को याद करे कि अम्मी ने तो इससे ज्यादा जली कटी सुनाई थी, और हाथ भी रखा था मेरे को उस दिन, ताड़ करके मारा था, बदतमीज भी बोला था मेरे को, अभी तो सास ने बोला नहीं मेरे को बदतमीज, तो यूं करके अपना जहन बनाए कि कोई बात नहीं, मेरी पहले एक माँ थी, अब मेरी इन मानो कर दो माए हैं, एक मिक्के में एक ससुराल में, सास मेरी माँ है बस, माँ मैं तुम्हारी खिदमत करूंगी, माँ के पांव दबाए, नहीं मम्मी नहीं नहीं मैं बर्तन धोऊंगी, मैं खाना पकाऊंगी, इस तरह वो इसका दिल लुभाए। ठीक है, हो सकता है कि वो अम्मी जान छुड़ा कर आपको काम सौंप भी दे, ये भी रिस्क रहेगा, लेकिन ये क्या वो तरकीब से आप इसको अगर डील करेंगे, इस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि किसी तरह भी इनके दिल में उतरे, अगर डांट पड़ भी जाए नंद सख्त सुस्त कह दे, सास सख्त सुस्त कह दे, तो इसका मतलब जवाब ना दे। अच्छा, जवाब की दो सूरतें, एक तो जवान से जवाब होता है, जो बेलगाम होती है मुंह फट वो तो जवाब देगी और अपना घर खराब करेगी, लेकिन बाज होती है ना मुंह फट नहीं होती, तो वो मुंह फट नहीं होती है तो मुंह फुलाती है, मुंह फुलाना समझते हैं, मुंह चढ़ा लेती है। ये भी दर्द सर होता है ससुराल के लिए कि ये देखो, जब देखो मुंह सजाकर सोबड़ा सजा के बैठी होती है, तो यूं भी मुसीबत खड़ी होती है। या क्या करती है जो बहू अगर पहुंच नहीं सकती ना ससुराल वाले पावरफुल होते हैं, तो बर्तन धोते धोते टकाटक पछाड़ेगी, दरवाजा बंद करते जोर से फाट करके बंद करेगी, ये भी एक एहतजाज का अंदाज है। तो ये धंधे भी ना करेगा वो भी, मतलब सारे मुंह से खाते हैं नाक से नहीं खाते, समझते हैं कि ये हमको सुना रही है। अच्छा, बाज बहुएं ये करती हैं, वो अब कोई लड़ाई झगड़ा हो गया घर में, है पुरानी बहू है लेकिन झगड़ा हो गया, तो क्या करेगी, बच्चों को डांटेगी, और इस तरह डांटेगी कि वो सास सुन रही है, नंदे सुन रही है, और कोसने देगी, तुम फट पड़ो, तुम्हारा सत्यानाश जाए, और तवज्जो उधर होगी, इनका सत्यानाश जाए, मेरा शोर छीन लिया इन लोगों ने, वो समझ। अच्छा, आपकी ये नीयत अगर बहू की नीयत नहीं भी है ना, तो वो अपने ऊपर ओढ़ लेती, शैतान कान में बोलता, देखो तुमको कोसने दे रही है, तुमको बदवाएं दे रही है, और वो खामा खा मतलब यानी कि पंगा डाल देती है सास, ये हमको कोसने देती है, अलग इसको तवज्जो नहीं होती इसकी तरफ। तो इसलिए बहुत हिकमत अमली से घर चलाया जाता है। अगर मेरे ये दो तीन मदनी फूल जो मैंने दिए ना, ये मैं कहता हूं कि खैरुल कलाम है मा कल्ला वदल्ला, यानी कि अच्छा कलाम हो जो कलील यानी मुख्तसर और पुर दलील हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना पुर मग्ज और पुर दलील कलाम है कि अगर इसी अंदाज में सास बहू को और बहू सास को डील करेगी, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल घर जो है ना वो जन्नत बन जाएगा। ये मुहावरा है, हाँ, घर ऐसा पुर अमन बन जाएगा, अमन का गेवारा बन जाएगा।
माशाल्लाह, बाबा जज़ाकल्लाहु खैरा,
आमीन।
मदनी चैनल के नाज़रीन और इस्लामी भाइयों के लिए यहाँ पर एक मालूमात भी अर्ज़ करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना ने शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुन आलिया की एक VCD शाया की है, जिसका उन्वान ही ये है, घर अमन का गहवारा कैसे बने, घर अमन का गहवारा कैसे बने, घर अमन का गहवारा कैसे बने। मकतबतुल मदीना से आप इसे हासिल भी फरमा सकते हैं, और दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net के जरिए से आप इसे डाउनलोड करके भी समाअत फरमा सकते हैं। कई मदनी बहारे इस्लामी भाई इस सिलसिले में सुनाती रहते हैं कि कई इस्लामी भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में इसका सिलसिला किया, उनकी घर वालों ने देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह अमन की कैफियत, भाईचारगी की कैफियत, मोहब्बतों की कैफियत बहुत हद तक बढ़ गई अल्हम्दुलिल्लाह।
बापा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो अभी बयान फरमाया, तो इसमें तो सास और बहू दोनों का बयान हुआ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई बयान चल रहा हो या मदनी मुज़ाकरे में, अगर मिसाल सास को समझाने के लिए आपने कुछ बयान किया, तो बहू फौरन मदनी चैनल देखते देखते उसकी तरफ देख रही होती कि हाँ देखो आपको सुना रहे हैं, और इसी तरह जब बहू को कोई बात सुनाई जाती है तो सास उसकी तरफ देख रही होती है कि मतलब देखो इस तरह करना चाहिए। तो बाज़ औक़ात ये भी एक शैतानी हमले होते हैं, और इस तरह से भी बाज़ औक़ात बात जो है वो खराब हो जाती है।
सास बहू का नहीं बापा, ये बीवी और बच्चों की अम्मी और बच्चों के अब्बू का मामला भी होता है, कि जब वो कभी बयान में या मुजाकरे में हो रहा होता है कि शोहर को ऐसा होना चाहिए, तो इशारा होता है देखें आपके लिए बयान चल रहा है, इस्लाम मतलब बच्चों की अम्मी के लिए होता है, तो फिर शोहर कहता है देखो ये तुम्हारे लिए बयान चल रहा है, तो क्या अंदाज होना चाहिए अगर इस तरह का मौजू कभी हो तो?
इसमें यह होना चाहिए कि आप तवज्जो से सुनिए, उनकी नेकी की दावत दें उनको, ऐसा ना लगे कि मुझे तंज कर रहा है या तंज कर रही है, क्योंकि ये फिर दिल आजारी तो है इसमें। अगर शोहर को बीवी कहेगी कि ये आपके लिए बयान हो रहा है, और अगर ये बच्चों की अम्मी से कहेगा कि देख सुन सुन सुन, बड़ी बनती है ना, सुन क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखो पापा क्या कह रहे हैं, तो इस तरह हो सकता है कि दिल आजारी की सूरत बने। तो बस ये कि हिकमत अमल ही चूक गए हम, पैसे गिनने में लग गए, पैसे गिनने तो ऐसे सफाई से आते हैं कि पूछो मत, गिनने क्या वो अगले को चुकमा देकर थोड़े पैसे ज्यादा में खपाने भी आते हैं अपने को, लेकिन नहीं आते तो बस ये दीन के मामलात नहीं आते, अपना घर चलाना नहीं आता, बस दुकान चलाना आती है, लेकिन ये तो क़यामत के दिन पता चलेगा दुकान किस तरह चलाई जाती है, कौन दुकान चलाता है शरीयत के मुताबिक, इल्ला माशाअल्लाह, ना बहुत कम होंगे कि जो शरीयत के मुताबिक कारोबार करते होंगे, صحیح بولتا ہوں کہ اگر میں کہوں نا کہ 1,000 میں سے 999 اپنی دکان غلط چلاتے ہوں گے تو یہ بھی مبالغہ ہے. 1,000 ایک آدمی بھی صحیح دکان نہیں چلاتا ہوگا اس دور میں. کوئی کسی کو دعویٰ ہے نا کہ میں صحیح دکان چلاتا ہوں تو انشاءاللہ ہمارے دارالفتا کے علماء کے پاس جائے گا, دارالفتا اہل سنت کے, تو اس کو پتا چلے گا کہ صحیح دکان کس طرح چلائی جاتی ہے, اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں غلط تھا, یہ صحیح کہہ رہا تھا. میں حقیقت میں بولتا ہوں, ہمارے یہاں دکان چلانے والا وہ ماہر جو ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں کہ جو جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر, ترکیب سے گاہک کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس سے پیسے نکالوا لے, گھٹیا مال اس کو بڑھیا شو کر کے اس کی نظر میں اس کو ٹکا دے, یہ اس کو بولتے ہیں دکان چلانے والا. اور اس طرح کے جو سیلس مین ہوتے ہیں نا ان کی تنخواہ زیادہ ہوتی, کپڑے کے اور سیلس مین ہو تو ان میں آفر کرتے ہیں یار میرے ادھر آ جاؤ میں اتنی تنخواہ دوں گا, وہ بولے یار آجا آجا میرے پاس میں اتنی تنخواہ دوں گا. جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ اس کے پاس سے کوئی گاہک واپس نہیں جاتا, یہ چکنی چپڑی باتیں کر کے پھنسا لیتا تو اس کو کھینچتے ایک دوسرے سے, وہ جھوٹ بول کر, دھوکا دے کر, کسی طرح بھی کچے رنگ کو پکا رنگ کہہ کر اور کپڑے کی کوالٹی بڑھیا بتا کر وہ ٹکا دیتا. اس لیے وہ ماہر ہوتا ہے اس میں, اپنے فنڈ میں تنخواہ زیادہ ملتی ہے. یہ تو پتا چلے گا قیامت کے دن کی تنخواہ کس کو بولتے ہیں, اللہ کرے مرنے سے پہلے پہلے ابھی ابھی پتا چل جائے. اور جھوٹ دھوکا بھلے تنخواہ کم ملے, دھوکا دینا چھوڑ دو, جھوٹ بولنا چھوڑ دو, لوگوں کو ٹھگنا چھوڑ دو, جو مال کی کوالٹی وہی بتائیں, ایک ذرہ بھی اس کی کوالٹی کو بڑھیا مت بتائیں, جو ہے وہ بتا دو. دھوکا مسلمان کو کیا, کافر کو بھی دھوکا دینا حرام ہے, اس کو بھی نہیں دے سکتے. تو بہت ہی ناگفتہ بے حالات ہیں, اللہ تعالی ہمارے حالات پر رحم فرمائے, ہم اچھے بن جائیں. ہم دیکھنے میں نکھرے نکھرے لگتے ہیں, اچھے اچھے لگتے ہیں, لیکن حقیقت میں ہمارا باطن بہت گندا ہے, بہت صفائی کی ضرورت ہے, بہت زیادہ صفائی کی ضرورت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی وسلم.